अन्वे ने उसकी तरफ अपनी हथेली बढ़ा दी तो आन्या ने मुस्कुराकर उसकी हथेली थाम ली। अभी सुबह सुबह थी तो कोई उठा नहीं था। अन्वय आन्या का हाथ थामे निहल से बाहर आया और इसके साथ ही एक बग्गी उनके सामने आकर रुकी। आन्या की आंखें चमक उठी। ऐसी बग्गी उसने बस टीवी में कार्टून में देखी थी। अन्वय ने उसको अंदर बिठाया, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ गया। आन्या इस एक पल में उससे अपनी सारी नाराजगी और गुस्सा भूल चुकी थी। मौसम सुहावना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे बग्गी के सफ़ेद पर्दे उड़ रहे थे। आन्या लबों पर मुस्कान सजाए बाहर देख रही थी। हवाओं से उसके खुले बाल बार बार आगे आकर उसके चेहरे को ढकने लगते और वो अपनी उंगलियों से उन्हें अपने कान के पीछे कर देती। अन्वे बस आन्या को देख रहा था। कितनी हसीन लग रही थी वो इस वक्त। अन्वे चाहकर भी उस पर से अपनी निगाही नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बाद एक जगह जाकर वो बग्गी रुकी तो आन्या ने अन्वय की तरफ निगाहें घुमाई। अन्वय खुद नीचे उतर गया, फिर आन्या की तरफ जाकर अपनी हथेली उसके तरफ बढ़ा दी। आन्या ने मुस्कुराकर उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। अन्वय ने ध्यान से उसे नीचे उतारा, फिर बग्गी पर बैठे शख्स को जाने का इशारा कर दिया। आन्या के लिए ये सब किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। अन्वय का हाथ थामे वो आगे बढ़ रही थी। अगर उसका बस चलता तो इस पल को वो यहीं रोक देती। कितना खास था ये पल उसके लिए। वो लबों पर मोहक मुस्कान सजाए अन्वय को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। कुछ 10 कदम आगे चलने के बाद अन्वय रुक गया। आन्या के कानों में पानी के कलकल आवाज पड़ी तो उसने अन्वय पर से निगाहें घुमाई और जैसे ही सामने देखा बस देखती ही रह गई। वो बहुत प्यारी जगह थी। सामने झरना बह रहा था जिसके पानी में कुछ बत्तख तैर रहे थे। चारों तरफ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिनकी खुशबू उस वातावरण को महका रही थी। बड़े बड़े पेड़ लगे थे। आन्या आंखों में चमक लिए सब देख रही थी। उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अन्वय की तरफ नजरें घुमाई और हैरानी से बोली, ये वही जगह है ना जहां उस दिन तुम आए थे जब मैंने तुम्हें पुकारा था? पर तब तो ये जगह ऐसी नहीं थी। अभी तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तब यहाँ सिर्फ झरना ही नजर आ रहा था। तो क्या ये सब तुमने जादू से किया है? आन्या हैरानी से उसे देखे जा रही थी। अन्वय ने उसे देखा और वहीं पेड़ से टिककर बैठते हुए बोला, जादू नहीं है कुछ भी, और मुझे कोई जादू नहीं आता है। तुम्हारे तरह ही हूं मैं, बस मेरी कुछ पावर्स हैं। मैजिक नहीं आता मुझे। ये जगह जो तुम देख रही हो, ये मेरी मनपसंद जगह है। ये इस जगह की खासियत है। सिर्फ सुबह के ही वक्त इस जगह की असली खूबसूरती देखी जा सकती है। सूरज के निकलते ही यहाँ सिर्फ झरना रह जाता है, सभी फूल मुरझा जाते हैं और ये एक सामान्य जगह बन जाती है। ओ, मतलब ये इस जगह का मैजिक है, आन्या ने उसके पास बैठते हुए कहा तो अन्वय ने हाँ में सर हिला दिया और सामने देखने लगा। आन्या कुछ देर अन्वय को खामोशी से देखती रही, फिर उसने उसे देखकर कहा, अन्वय, उस रात मुझे दलदल से तुम्ही ने बचाया था। वो वैम्पायर जिसे देखकर मैं डरकर बेहोश हो गई थी, वो तुम्ही थे ना? उसका सवाल सुनकर अन्वय ने कुछ भी नहीं कहा। आन्या कुछ देर इंतजार करती रही, फिर खुद ही दोबारा बोलने लगी, मत बताओ तुम मुझे कुछ भी, पर मैं जानती हूँ कि तुम ही थे। तुम ही जब भी मुश्किल में होती हो तो हर बार मेरी मदद करने आ जाते हो। तुम मुझे पहले से जानते थे, तभी ट्रेन में मिलने के बाद तुमने मेरी मदद की थी। तुम नहीं कहोगे तब भी मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा तब तक जब तक मेरे अंदर जान है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे तुम भी मिलोगे और तुम्हारा प्यार भी मिलेगा। मैं पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर तुम्हें इग्नोर कर रही थी ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि कैसा लगता है जब वो इंसान जिससे आप दीवानों की तरह मोहब्बत करें वही आपको अनदेखा करे, आप पर ध्यान ना दे। पर मुझे अब एहसास हो रहा है कि ऐसा दिखाना सामने वाले के लिए भी आसान नहीं होता। तुम्हारे लिए भी ये बहुत मुश्किल होता होगा। मुझे पता है तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कभी तो मैं तुम्हारी नजरों में इस लायक बन पाऊंगी कि तुम्हें मुझे अपनाने में हिचकिचाहट ना हो, और तब तुम मुझे अपनी जिंदगी में जगह जरूर दोगे। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। बस तुम पहले जैसे ही मेरे साथ रहना, मेरी थोड़ी सी परवाह कर लेना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। आन्या बहुत ही संजीदगी से सब बोल रही थी। इस वक्त वो बहुत समझदार लग रही थी। अन्वय अब भी सामने देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा महसूस हो रहा था उसे उसकी बात सुनकर। अचानक ही वहां झमाझम बारिश शुरू हो गई। आन्या झट से उठ खड़ी हुई और अपनी दोनों बाहों को फैलाकर सर ऊपर करके गोल गोल घूमने लगी। उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैली थी और वो बहुत खुश थी। अन्वय ने उसको यूं भीगते देखा तो उसके पास आकर बोला, आन्या क्या कर रही हो? भीग जाओगी तो ठंड लग जाएगी तुम्हें। उधर चलकर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। उसने उसके हाथ पकड़ लिया और लेकर जाने के लिए मुड़ा, पर आन्या अपनी जगह से नहीं हिली। अन्वय वापस उसकी तरफ पलका और थोड़ा परेशान होकर उसे देखने लगा। आन्या ने उसका परेशान चेहरा देखा तो मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, बारिश से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। घर पर भी मिसेस सिन्हा से छुपकर मैं बारिश में खूब नहाती थी। वो मना करती थी कि बीमार पड़ूंगी तो इलाज कराने के लिए उन्हें अपने पैसे मुझ पर बर्बाद करने पड़ेंगे, पर मैं छुपकर नहा लेती थी और कभी बीमार भी नहीं पड़ती थी तो उन्हें मुझ पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। अब भी बारिश में भीगने से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। कुछ अलग सा रिश्ता है मेरा बारिश से, जब उसकी ठंडी ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ती हैं तो दिल को अलग ही सुकून मिलता है। तुम भी मेरे साथ भीग कर देखो, बहुत अच्छा लगता है सच्ची। उसने अन्वय के दोनों बाहों को फैला दिया, फिर खुद भी अपनी बाहों को फैलाए बारिश में भीगने लगी। अन्वय एकटक अब उसके चेहरे को देख रहा था, उसके चांद से सोने मुखड़े पर यहाँ वहाँ ठहरी पानी की बूंदें बेशकीमती मोतियों जैसे चमक रही थी। उसके चेहरे का नूर और भी बढ़ गया था बारिश में भीगने से। आन्या अब गोल गोल घूमने लगी, बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल आपस में चिपक गए थे और अब उसकी पीठ नजर आने लगी थी। अन्वय की नजर जैसे ही उसके कंधे के नीचे बने काले निशान पर पड़ी, उसकी आंखें गहरी हो गई। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब कुछ देर पहले वो यूं ही उसके कमरे में घुस गया था, तब भी उसने इस निशान की झलक देखी थी पर ध्यान नहीं दिया। अन्वय कुछ देर एकटक उस निशान को देखता रहा, फिर उसने आन्या की तरफ कदम बढ़ा दिए। आन्या आंखें बंद किए अन्वय की तरफ पीठ किए खड़ी थी। अन्वय उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने आन्या के बालों को उस तरफ से हटाते हुए उसके कंधे से नीचे पीठ पर बने उस निशान को देखा तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। उसने हैरान परेशान निगाहों से आन्या को देखा जो हर बात से अनजान बस बारिश में एंजॉय कर रही थी। अन्वय एकटक उस निशान को देख रहा था और अन्वय के एकदम पीछे ही खड़ा था। आन्या अचानक ही घूम गई तो वो सीधे पीछे खड़े अन्वय से टकरा गई। उसके हाथ अन्वय के सीने पर जाकर ठहर गए और निगाहें अन्वय की काली गहरी निगाहों में झांकने लगी। अन्वय के हाथ आन्या की कमर पर थे और दोनों की एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। बारिश की बूंदें उन दोनों को भिगा रही थी। आन्या अपनी पलकों को झपकाते हुए उसे देख रही थी और इस वक्त बेहद दिलकश लग रही थी।
अन्वय के बाल भी भीगने की वजह से उसके माथे पर आ गए थे, उनसे टपकता पानी उसके नाक से होते हुए उसके लबों पर ठहर गए थे। पहली बार अन्वय को देखकर आन्या के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। वो उसकी आंखों में झांकते हुए उसके करीब जाने लगी। अन्वय अब भी उस निशान के बारे में सोच रहा था, शायद आन्या को देखकर अपनी उलझनों को सुलझाने का तरीका ढूंढ रहा था। जैसे ही आन्या के सांसों को उसने अपने चेहरे पर महसूस किया, वो अपनी सोच से बाहर आया और आन्या के मुंह को भांपते हुए उसने तुरंत ही चेहरा फेरना चाहा, पर आन्या ने उसके गाल पर अपनी हथेली रखकर उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ घुमा लिया। अन्वय ने कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपने लबों को खोला, आन्या के गुलाब से पंखुड़ियों जैसे कोमल लबों ने उसके खुले लबों को बंद कर दिया। इसके साथ ही वहां काले बादल घिराए, एकदम अंधेरा छा गया, जोर की बिजली कड़की। अन्वय एक झटके से साथ आन्या से अलग हो गया। अगले ही पल आन्या निढाल होकर जमीन पर जा गिरी। बारिश एकदम से रुक गई और आकाश में छाए बादल छट गए। सूरज की किरणें हर दिशा में अपने प्रकाश को फैलाने लगी। अन्वय को समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या उसके साथ। बहुत अजीब फील हो रहा था, अपने अंदर कुछ अलग सा एहसास हो रहा था उसे। उस पर अचानक ही मौसम ने करवट ले ली। वो इसी उलझन में वहां खड़ा था कि उसकी निगाहें वहां बेहोश पड़ी आन्या पर पड़ी। उसने बाकी सब बातों पर से ध्यान हटाया और उसको अपनी बाहों में उठाकर हवा की गति से महल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो आन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। जूली अंदर आन्या के पास थी, उसने आन्या के भीगे कपड़े बदले, फिर उसको अच्छे से ब्लैंकेट से ढककर और अलाव जलाकर बाहर आ गई और अन्वय को देखकर बोली, वो अभी गहरी नींद में है पर ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर अन्वय अपने कमरे की तरफ चला गया, पर उसके दिमाग में आज हुई सभी घटना घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसने अपने कपड़े बदले और नीचे पहुंचा तो हॉल में ही अनामिका जी बैठी थीं। अन्वय उनके सामने जाकर बैठ गया और अपनी ही सोच में खोया हुआ था वो। अनामिका जी को विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। अन्वय को किसी के दिमाग की बात पढ़ने के लिए उसको छूना पड़ता था, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ उसकी आधी ही शक्तियां थीं, पर अनामिका जी आंखों को देखकर सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की शक्ति रखती थीं। उन्होंने अन्वय की आंखों को पढ़ लिया, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन ही मन बोली, शायद अब वक्त आ गया है कि आपको आपका और आन्या का सच पता चले। जब कुदरत ने ही अपना फैसला बता दिया है तो अब हम भी इस रहस्य पर से पर्दा उठा देंगे। शायद उससे आपकी उलझन कुछ कम हो जाए और शायद आपके और आन्या के बीच सब ठीक हो सके। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया, फिर खड़े होते हुए अन्वय को देखकर बोली, अन्वय हमारे साथ आइए, हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उनकी आवाज सुनकर अन्वय अपनी सोच से बाहर आया। उसने उन्हें देखा तब तो वो अपने कक्ष की तरफ बढ़ गईं। वो आवाज से ही गंभीर लग रही थी तो अन्वय खामोशी से उनके पीछे चला गया। वहीं दीवार के पीछे खड़ी मोहिनी ने उनकी बात सुनी तो कुछ सोचकर वो भी उनके पीछे चली गई।